सुबह 10:30 बजे, जैसे यहाँ पे 10:30 से 11 बजे तक कीर्तन था, 11 से 12 बजे तक प्रवचन होगा, और 12 से 12:30 जो है यहाँ पे राजभोग आरती होती है, और उसके बाद 12:30 के बाद सबके लिए लंच प्रसादम की व्यवस्था होती है ललिता भवन हॉल में। तो यहाँ पे पीछे जो खड़े हैं वो भी यहाँ पे आ जाइए, जो दर्शन के लिए है वो भी दर्शन लेके यहाँ पे बैठ सकते हैं, ठीक है। तो आज के हमारे प्रवचन करता है श्रीमान प्रेमनंद प्रभु। तो प्रभु जी का नाम सचिन पलस्कर है। 2006 से प्रभु जी इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपनी एमबीबीएस डिग्री जेजे कॉलेज ऑफ मेडिकल वहाँ से प्राप्त की है। उसके बाद उन्होंने पेडियाट्रिक्स में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। अभी फिलहाल यहाँ पे गोवर्धन इको विलेज में वो 7 साल से यहाँ पे सेवा प्रदान कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने अपना वाड़ा में, यहाँ पे तालुका लेवल पे हमारा एक स्थान है वाड़ा में, उन्होंने उनका 15 बेड का उनका हॉस्पिटल भी चला रहे हैं वहाँ पे। तो बहुत ही सुंदर तरीके से सेवा करते हैं प्रभु जी यहाँ पे। तो आज हमें दीपावली का, ये अभी सीजन चल रहा है, तो दीपावली का क्या क्या महत्व है उसके बारे में प्रभु जी बोलेंगे। तो उनका हम यहाँ पे स्वागत करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के, एक साथ बोलिए हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा। हम एक छोटा सा भजन गाएंगे, उसके पश्चात कथा का आरंभ करेंगे। मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय जय राधा माधव कुंज विहारी, जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय जय राधा माधव कुंज विहारी, जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रामा रामा हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे हरे। जय राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे जय। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय। नितय गौर हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल नितय गौर। श्री हरि नाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की। ओम ज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। सबका आज के इस रविवारीय सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। हर रविवार को सुबह 10:30 से 12:30 इस समय में हम रविवारी सत्संग कार्यक्रम मनाते हैं, तो उसमें 10:30 से 11 बजे तक कीर्तन होता है, 11 से 12 बजे तक कथा प्रवचन होता है, 12 से 12:30 बजे तक श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी का महाआरती होता है, और उसके पश्चात सबके लिए लंच प्रसाद होता है। तो हम आप सभी से विनती करते हैं, कुछ हमारे जो रेगुलर भक्त है वे हमेशा आते हैं, हर रविवार को आते हैं, और कुछ नए अतिथि भक्त भी आए हैं, उनसे भी हम विनती करते हैं कि आज की तरह हर रविवार को आप आइए और इस कार्यक्रम का लाभ उठाइए। आप आपके मित्र परिवार परिजनों के साथ यहाँ पर आ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। आज का ये जो दिन है विशेष दिन है, दीपावली का दिन है, और जो पर्व चल रहा है, जैसे कि प्रभु जी ने कहा तो दीपावली का पर्व चल रहा है। तो दीपावली के बारे में अभी कुछ सीनियर लोग भी यहाँ पे बैठे हैं, उनको हमसे भी ज्यादा ज्ञान होगा कि दीपावली का महत्व क्या है, परंतु जो भी हमने शास्त्रों से पढ़ा है या भक्तों से सुना है उसके बारे में हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो दीपावली का जो पर्व है विशेष रूप से 5 दिनों में मनाया जाता है। उसमें पहला दिन जो है वो धनतेरस कुछ लोग बोलते हैं, उसी को धनत्रयोदशी बोलते हैं, वो परसों माने 10 तारीख को हो चुका। फिर दूसरा दिन है नरक चतुर्दशी, वो कल था। फिर तीसरा दिन है लक्ष्मी पूजन, अमावस्या के दिन होता है लक्ष्मी पूजन, उस दिन वही मुख्य दिन है, उसमें बहुत सारी लीलाएं हो चुकी है उसी दिन पर, आज के दिन पर। तो वह अमावस्या का मुख्य दिन है, दीपावली उसी दिन को कहते हैं। और नेक्स्ट अगला दिन है गोवर्धन पूजा, उसी दिन को बलि प्रतिपदा ऐसे भी कहते हैं, उस दिन गोवर्धन पूजा हुआ था। और आखिरी माने पांचवा दिन है वह है भाई दूज या भाऊ बीज बोलते हैं मराठी में। तो ये इस प्रकार 5 दिनों में दीपावली मनाया जाता है। तो एक एक दिन का हम महत्व समझ लेंगे शास्त्रों के अनुसार और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हमने कहा पहला दिन है धन त्रयोदशी, ये उसी को धनतेरस भी बोलते हैं। तो समुद्र मंथन की कथा है, आप में से कुछ जनों को पता होगी, हम रिपीट करेंगे। तो एक बार की बात है कि देव असुर इनमें हमेशा युद्ध रहता है, उसमें दो मतलब दो विरुद्ध पक्ष है, वो देव देवता और असुर माने दानव, इनमें हमेशा युद्ध होता है। परंतु कभी कभी ज्यादातर समय पर देवता ही जीतते हैं, वो विजयी होते हैं, और अक्सर राक्षस जो है दानव जो है वो हारते हैं। परंतु हर बार ऐसा होता नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि देवों की शक्ति असुरों से कम रहती है। एक बार ऐसा ही हुआ, इंद्र ने अपने गुरु का अपमान किया था, उनके गुरु ने उनको ऐसा भगवान का हार गार्लैंड उनको दिया था, तो उन्होंने अपने उन्माद में वह हार उनके जो हाथी है उनको पहना दिया। उस हाथी है तो वो तो प्राणी है, उसका गलती होना स्वाभाविक है, उसने वो हार लेकर अपने पैर के नीचे कुचल दिया, और इसके वजह से उनको गुरु का अपमान करने का पाप लग गया इंद्र को, इसलिए उनका शक्ति कम हो गया। उसके विरुद्ध दानव जो थे या असुर थे, उनका राजा थे बलि महाराज, उन्होंने अपने गुरु की बहुत अच्छे से सेवा की थी, तो इसलिए उनका शक्ति बहुत बढ़ गया था। तो इसीलिए इस बार ऐसा हुआ कि दानवों से देवी देवता पराभूत हो गए, हार गए, और अपना जो इंद्रासन है वो भी हार बैठे। तो नैसर्गिक रूप से अभी जब भी हमने जीवन में कठिनाई आती है तो हम अक्सर भगवान का शरण लेते हैं, आश्रय लेते हैं। जीवन में सभी चीजें अच्छी चलती रहती है तो कभी कभी हमको भगवान का स्मरण नहीं होता है, परंतु जीवन में कुछ कठिनाई आई तो तुरंत हमको भगवान का स्मरण होता है। भगवत गीता में एक श्लोक है, उसमें कहा है अर्थो अर्थार्थी जिज्ञासी और ज्ञानी, ये चार प्रकार के लोग भगवान के पास अक्सर आते हैं। तो उसमें पहला है अर्थो, अर्थो माने जिसको कुछ तकलीफ है, जीवन में कुछ तकलीफ है, वो पहली बार भगवान के पास आएंगे। अर्थार्थी माने जिसको कुछ मांगना है, भगवान मुझे ये धन दो, पुत्र दो, पुत्री दो, पत्नी दो, नौकरी दो, ऐसा मांगने के लिए भी बहुत सारे लोग भगवान के पास आते हैं। तीसरे लोग है जिज्ञासु, उनको भगवान कौन है, मैं कौन हूं, भगवान के हमारा रिश्ता क्या है, ये पृथ्वी ये दुनिया कैसे चल रही है, ऐसी जिज्ञासा रहती है। और चौथे उन ज्ञानी, ज्ञानी लोगों को सब हो गया, उनको सब समझ गया है और उनको समझ आया कि भगवान ही अंतिम सत्य है और भगवान की प्राप्ति करना ही जीवन का उद्देश्य है। तो इस प्रकार वो एक चार प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। उसमें से जो पहले दो कैटेगरी है अर्थो और अर्थार्थी, जिनको कुछ तकलीफ है और जिनको कुछ चाहिए, ये दोनों अपना काम होने के बाद भगवान को भूल जाते हैं। मानो मेरा तकलीफ है, मैं भगवान के पास आया, भगवान मुझे बहुत ये बीमारी तकलीफ दे रही है, जल्दी से मुझे ठीक कर दो, भगवान की कृपा से ठीक हो गए, भूल जाते हैं, अरे भगवान की कृपा से मैं ठीक हो गए। अर्थार्थी कुछ चाहिए, भगवान को मांगा, भगवान मेरा हॉस्पिटल अच्छा चलने दो, अच्छा होने दो, ये होने दो, हो गया, भूल जाते। तो अक्सर ऐसा होता है, परंतु ये जो जिज्ञासु और ज्ञानी है ये कभी भगवान को भूलते नहीं। तो देवी देवता भी कभी कभी क्या करते हैं, जब ये सब अच्छा चलता रहता है तो भगवान को भूल जाते हैं, परंतु जीवन में कभी कठिनाई आती है तो तुरंत उनको भगवान का स्मरण होता है। तो नैसर्गिक रूप से वो अपने गुरु के पास गए, गुरु ने बोला आप ब्रह्मा जी के पास जाओ, ब्रह्मा जी ने बोला आप भगवान विष्णु के पास जाओ, तो वे विष्णु जो भगवान है उनके पास गए और बोला अभी कठिनाई है, हमारे जीवन में तकलीफ आई है, हमको असुरों ने हरा दिया है, हमारा इंद्रासन जो स्वर्ग है वो भी चला गया, बैठने के लिए भी जगह नहीं, क्या करें। तो उन्होंने भगवान श्री विष्णु ने कहा, उनको आशीर्वाद दिया, बताया, मार्ग दिखाया कि आज के समय में आपकी शक्ति कम है और असुरों की शक्ति ज्यादा है, आपको अगर शक्ति पुनः प्राप्त करनी है तो आपको अमृत का प्राप्ति करना पड़ेगा, अमृत, हाँ, नेक्टर बोलते हैं अंग्रेजी में। तो अमृत का प्राप्ति करने के लिए आपको समुद्र मंथन करना पड़ेगा, जो क्षीर सागर है जिसमें भगवान विष्णु पहुंचते हैं, वो क्षीर सागर पे आपको समुद्र मंथन करना पड़ेगा। उसी के पश्चात आपको अमृत की प्राप्ति होगी और उससे आपको आपकी शक्ति वापस से मिलेगी। तो बोले ठीक है हम करते हैं, देवता तुरंत तैयार हो गए। परंतु भगवान ने कहा कि आपकी जो शक्ति है सभी देवताओं की मिलकर, उससे भी आप समुद्र मंथन नहीं कर पाएंगे, आपको आपके ही इतने और डबल शक्ति चाहिए। तो आपको चाहिए कि आपको असुरों के साथ गठबंधन करना पड़ेगा, फ्रेंडशिप करना पड़ेगा, और दोनों में, दोनों ने एक साइड से देव एक साइड से असुर, ऐसे करके आपको समुद्र मंथन करना पड़ेगा। उसी के पश्चात समुद्र से जब ये अंत में अमृत आएगा तो वो अमृत से आपको आपकी शक्ति प्राप्त होगी। तो ठीक है बोले ऐसा करते हैं। तो भगवान के आशीर्वाद से, भगवान के सुझाव के अनुसार देवता असुरों के पास गए और दोनों ने गठबंधन किया कि हम दोनों मिलकर ये जो क्षीर सागर है उसमें मंदार नाम का पर्वत रखेंगे, उसको वासुकी नाम का नाग है सबसे लंबा सांप है उसका रस्सी बनाएंगे और समुद्र मंथन करेंगे, और इसमें से जो अमृत मिलेगा तो उसको हम बांटकर पी लेंगे। ऐसा बोलकर उनका कार्य चालू हो गया। उसमें भी बहुत सी कठिनाई आई, पर हर मार्ग पर, हर स्टेप पर भगवान विष्णु ने देवी देवताओं को और असुरों को भी मदद की और समुद्र मंथन चालू हो गया। चालू होते समय ही पहले तो समुद्र से हलाहल नाम का विष आया। कभी देखिए हम जीवन में कोई भी नया उपक्रम हाथ में लेते हैं, मानो कोई नया कोई बिल्डिंग बांधना चालू करता है, या कोई नया स्कूल चालू करता है, कोई हॉस्पिटल चालू करता है, या और भी कोई एक्टिविटी, हम नया जीवन में कुछ करने जाते हैं, भले पढ़ाई कोई नया कोर्स हो कुछ भी हो, तो उसमें शुरुआत में बहुत कष्ट आते हैं। हम भी MBBS में जब एडमिशन लिए तो फर्स्ट ईयर बहुत डिफिकल्ट था, हमारे 200 बच्चों में से लगभग 32 लड़के फेल हो गए, फर्स्ट ईयर में ही फेल हो गए, क्योंकि वो नया सब रहता है ना, सिलेबस नया, लैंग्वेज नया, कोई गांव से पढ़ा हुआ रहता है उसको अंग्रेजी नहीं आता है और सब अंग्रेजी में रहता है सब, मतलब अलग अलग चीजों के कारण से। पर फर्स्ट जो शुरुआत है उसमें ज्यादा कठिनाई आती है, एक बार स्टेबल हो गया कोई भी बिजनेस हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो तो बाद में वो स्मूथली चलता है, तो शुरुआत में ही कठिनाई आती है। उसी प्रकार समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या बाहर आया, हलाहल नाम का विष आया, इतना जहरीला था कि अगर वो स्प्रेड हो जाता तो मानो प्रलय हो जाता, सभी लोग या सभी देवी जो भी जीवित लोग हैं उनका मृत्यु हो जाता, इतना वो पावरफुल विष था। उस समय भगवान ने शिव जी को वहां पे आमंत्रित किया और उनको बोला कि आप ये विष प्राशन करो। तो अभी देखो भगवान के भक्त है शिव जी भी, तो उनको किसी को आपको ऐसा सेवा दिया कि आपको सबसे कठिन सेवा, तो आप लगे अरे मेरे साथ तो इम्पार्शियलिटी हो रही है, हाँ ये प्रभु जी हमेशा भगवान का आरती करते और हमको हमेशा झाड़ू दे देते, हाँ ऐसा लगेगा। परंतु भगवान की सेवा में ऐसा है कि जो भी सेवा हम करते हैं उसका उतना ही लाभ होता है, मानो आप मंदिर में झाड़ू मारो पोछा करो या भगवान की आरती करो, दोनों का उतना ही लाभ है। भगवान की दृष्टि में कोई भी सेवा बड़ा या छोटा नहीं है। भगवान श्री राम की कथा में हम सुनते हैं किस प्रकार हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर उठाकर राम सेतु बनाने में मदद कर रहे थे, और उसी समय जो स्क्विरल रहती है खारुताई, हाँ तो खरगोश बोलते हैं हिंदी में, तो खारुताई अपने पूंछ से केवल थोड़ा सा मिट्टी वहां पे उड़ा रही थी और वो ब्रिज को कुछ तो हेल्प कर रही थी, मराठी में बोलते हैं खारीचा वाटा, मतलब इनसिग्निफिकेंट सर्विस थोड़ा सा। परंतु भगवान श्री राम की दृष्टि से हनुमान जी का सेवा और वो स्क्विरल जो खरगोश था उसका सेवा दोनों बराबर है। तो इसी प्रकार भगवान जो भी हमको सेवा देते हैं वो हमारे लिए उचित रहती है और हमारे कैपेसिटी के अनुसार ही रहती है। अभी जो हलाहल विष है वो कोई देवी देवता, मनुष्य तो छोड़ दो, कोई देवी देवता का भी इतना कैपेसिटी नहीं था कि वो उसको ले सके या पचा सके या अपने पास रख सके, इतना कैपेसिटी शिवजी छोड़ के किसी के पास नहीं था, और ये भगवान जानते हैं। तो हमको कभी कभी लगता है कि अरे मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों आ रहा है,
मेरी इतनी परीक्षा भगवान क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपकी उतनी कैपेसिटी है। जो व्यक्ति जितने बड़ी क्लास में रहता है उसको उतने कठिन प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। फर्स्ट क्लास के बच्चे को 1+1 = 2 इतना ही दिया जाएगा, परंतु 12वीं में गया साइंस में मैथ्स में ऐसा कुछ पढ़ रहा है तो उसको समेशन ये वो अलग अलग कठिन कठिन प्रश्न आएंगे। उसी प्रकार अपनी कैपेसिटी के अनुसार भगवान हमको परीक्षा लेते हैं। तो हमको ऐसा भगवान को उल्टा प्रश्न नहीं करना चाहिए कि ऐसा क्यों। जैसे भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं तो उसमें से निकलने का मार्ग भी बताते हैं और हमको शक्ति भी देते हैं। तो हमेशा भगवान की सेवा जो भी हमें मिली तो उसका हमको उत्साहपूर्वक ग्रहण करना चाहिए और उसको अच्छा अपना अटेम्प्ट प्रयास अपना परफेक्ट करना चाहिए। यश देना या अपयश देना ये भगवान की इच्छा के अनुसार होता है और नैसर्गिक रूप से ज्यादातर समय में हमको यश ही मिलता है, विशेष रूप से अगर हम भगवान की सेवा करने जाते हैं तो। तो शिव जी ने वो हलाहल विष प्राशन किया और अपने गले में ही रखा, उसको नीचे तक नहीं जाने दिया पेट पर, और इसलिए उनका गला जो है वो कौन से कलर का हुआ, ब्लू नीले कलर का हुआ। इसलिए भगवान शिव जी का नाम क्या है, एक नीलकंठ, नीलकंठ भगवान की। तो इस प्रकार शिव जी ने इतना महान सेवा किया जो कि कोई नहीं कर पाता था और इसलिए उनका भी ख्याति बढ़ गया कि नीलकंठ नाम उनको मिल गया। उसके पश्चात समुद्र मंथन चलता रहा और अनेकों अनेकों उपहार या रत्न वो समुद्र मंथन से बाहर आते रहे। एक तो घोड़ा आया उसमें से उच्चश्रव नाम का, वो बलि महाराज ने ले लिया। फिर हाथी आया ऐरावत नाम का, वो इंद्र जी ने ले लिया। फिर लक्ष्मी आई, लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्राप्त हुई है। तो लक्ष्मी अपनी वरमाला लेके ही आई थी और तुरंत उन्होंने देखकर विष्णु जी को ही अपनी वरमाला पहनाई और इस प्रकार लक्ष्मी को विष्णु भगवान विष्णु ने ग्रहण कर लिया। तो इस प्रकार सब होते होते अंत में उस समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर बाहर आए। भगवान धन्वंतरी की। तो धन्वंतरी जो है वे आयुर्वेद के मतलब फादर ऑफ मेडिसिन जैसे बोलते हैं अंग्रेजी में, उस प्रकार आयुर्वेद के जनक है। उनसे सभी औषधियां आई है, उनसे सभी आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो धन्वंतरी जी से आया है। और जो अमृत सबसे इंपॉर्टेंट जो समुद्र मंथन का उद्देश्य था वो था अमृत का प्राप्ति और वो आखिर में धन्वंतरी भगवान लेके आए। तो वह जो तिथि है जिस दिन यह घटना हुई, जिस दिन धन्वंतरी भगवान बाहर आए, वो धनत्रयोदशी है। तो धन्वंतरी जी का एक मंत्र है, वो हम मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरये अमृत कलश हस्ताय सर्वभय विनाशय सर्वरोग निवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः। तो इसका अर्थ है कि धन्वंतरी जो है वे भगवान महाविष्णु के ही रूप है और वे त्रिलोक के नाथ और त्रिलोक के मार्गदर्शक है, सर्व रोगों का निवारण करने वाले है, सर्व भय का विनाश करने वाले है और उनके हाथ में क्या है, अमृत कलश। तो आयुर्वेदा में हमारे गोवर्धन आयुर्वेदा भी यहां पर है, जो भी प्रोसीजर पंचकर्मा का जो भी प्रोसीजर वो करते हैं वो चालू करने से पहले ये जो धन्वंतरी जी का मंत्र है उसका उच्चारण करके भगवान धन्वंतरी का आवाहन करते हैं कि हे भगवान धन्वंतरी, आप इस व्यक्ति का जो भी रोग है उसका निवारण करो। तो इस प्रकार दिवाली का पहला दिन धन्वंतरी पूजा हो गया। तो दूसरा दिन जो है वो है नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी का ऐसा कथा है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के असुर का अंत किया था। नरकासुर एक प्रकार से भूमि का ही पुत्र था। जब ही भूमि देवी को हिरण्याक्ष ने, एक राक्षस था हिरण्याक्ष, उसने रसातल में जाके छुपा के रखा था, उस समय भगवान श्री विष्णु वराह देव के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने पृथ्वी को अपने टस के ऊपर उठाकर बाहर निकाला था। उसी समय उनके दोनों के संयोग से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी और उसका नाम था भौम। भूमि का पुत्र था इसलिए उसका नाम भौम हुआ। परंतु कालानुरूप वह जो भौम था वो गलत लोगों की संगत में आ गया। हाँ, द्वापर युग में वो जरासंध, शिशुपाल, फिर कंस, इन सब लोगों के संगत में आने की वजह से उसका जो स्वभाव है वो गलत हो गया, उसको गलत आदतें लग गई और वो भौम से भौमासुर बन गया। तो इसमें हमको देखते हैं हम कि भले आप कौन से भी कुल में जन्म क्यों ना लिए हो, अगर आपकी संगति गलत है तो आपको उनका जो स्वभाव है या उनका जो आचरण है वो लगने ही वाला है। मराठी में एक प्रोवर्ब है, ढवळ्या शेजारी पवळ्या बांधला, वान नहीं पण गुण लागला। उसका मतलब ऐसा है कि आप अगर किसी व्यक्ति के साथ ज्यादा समय बिताते हो, उनके साथ ही रहते हो, तो उनका गुण अपने को लगता है। तो ये भौम जो कि भूमि देवी का पुत्र था, भगवान वराह देव का पुत्र था, वो भी असुरों के संगत में रहने की वजह से वो भी खुद असुर बन गया। और उसने क्या किया, अपने शक्ति के जोर पे 16,100 अलग अलग राजाओं की जो पुत्रियां थी, राजकन्याएं थी, उनको बंदिस्त करके रख दिया अपने कारागृह में। उसका विचार था उनसे विवाह करने का या उनका उपभोग लेने का। तो ऐसा नरकासुर था। तो भगवान श्री कृष्ण को ये सब 11,100 जो प्रिंसेस थी, राजकन्याएं थी, उन्होंने एक पत्र लिखा कि भगवान हमारा इस नरकासुर से रक्षण करो। तो भगवान तो कोई भी व्यक्ति भगवान को जब भी प्रार्थना करता है, आश्रय लेता है, तो भगवान उसको अभय प्रदान करते हैं। नासिक में कालाराम मंदिर है, आप में से बहुत से लोग गए होंगे, वहां पे भगवान का जो मुद्रा है ऐसा है। इवन तिरुपति बालाजी में भी ऐसा ही, एक हाथ ऐसा, एक हाथ। तो भगवान का इसका वो जो मुद्रा का अर्थ ऐसा है कि जो भी व्यक्ति मेरा, माने भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री राम का आश्रय लेता है, उसको भगवान, यहाँ पे हाथ पर लिखा भी हुआ है कि मां सूचो, भगवान उनको अभय प्रदान करते हैं। भगवान का अगर कोई व्यक्ति आश्रय लेता है तो उनको भगवान अभय प्रदान करते हैं, उसको किसी भी चीज का भय होने की आवश्यकता नहीं है। भगवद गीता में भी भगवान बोलते हैं, कौन्तेय प्रतिजान ही नमे भक्ता प्रणश्यति। तो उसका अर्थ क्या है कि कौन्तेय, हे अर्जुन, आप सबको बता दो कि नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी ह्रास नहीं होता है, उसका कभी नुकसान नहीं होता है। तो इस प्रकार ये सब जो रानियां थी या राजकुमारियां थी, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का आवाहन किया और भगवान श्री कृष्ण वहां पे द्वारका लीला में चल रही थी उस समय, तो सत्यभामा देवी जो कि उनकी एक पटरानी है, उसको साथ में लेकर यहां पे नरकासुर के जगह पर आए और अपने सुदर्शन चक्र से नरकासुर का अंत कर दिया और इन सभी 16,100 राजकन्याओं को मुक्त कर दिया। और भगवान ने कहा कि अभी आप सभी राजकन्याएं मुक्त है, आप अपने अपने घर चले जाओ। परंतु वो राजकन्याएं भगवान को कहने लगी, हे प्रभु, आपने हमको इस नरकासुर के से तो हमें बचा लिया, उससे तो हमारी मुक्ति कर दी, परंतु समाज हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो तो समय अलग था। उस समय में एक दिन के लिए भी एखादी स्त्री किसी दूसरे पुरुष के घर में या रहती थी तो उसको घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो वो बोले कि अभी हमें कौन एक्सेप्ट करेगा, हमसे ना तो कोई विवाह करेगा और ना ही हमारे माता पिता भी हमको एक्सेप्ट करेंगे, तो इससे तो अच्छा है कि हम आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण कितने दयालु है, वे कहते हैं कि मैं आपको स्वीकार कर लेता हूं। और ऐसा नहीं कि आपको अभी 16,100 दासियां उनको मिल गई, तो 16,100 सभी जो राजकन्याएं थे उनके साथ भगवान ने विधि पूर्वक विवाह किया और सबको एक अलग अलग राजमहल बना के दिया। और ऐसा भी नहीं कि कि 16,108 पत्नियां हैं, क्योंकि पहले ही 8 पत्नियां तो भगवान की थी, उसके साथ ये 16,100 हो गई, तो 16,108 पत्नियां हैं, तो 16,108 दिन के बाद एक पत्नी के घर में जाएंगी, ऐसा भगवान का नहीं है। भगवान छोटे में छोटे और बड़े में बड़े हैं, भगवान का कोई बराबरी नहीं कर सकता है। तो भगवान का एक विशेष क्वालिटी है कि वो एक साथ 16,108 रानियों के महल में उपस्थित रह सकते थे, रहते थे। तो हर रोज दिन भर का काम होने के बाद भगवान हर राजमहल में व्यक्तिशः रहते थे, भगवान खुद को एक्सपांड करते थे, जो कि क्वालिटी किसी में नहीं होती है। तो इसीलिए कुछ लोग भगवान से खुद की तुलना करते हैं, अरे तुम्हारे कृष्ण को तो इतनी गोपियां थी, भगवान को तो 16,108 पत्नियां थी, और हमने एक दो के साथ रिलेशन रखा तो क्या प्रॉब्लम है। परंतु हम भगवान की बराबरी नहीं कर सकते, भगवान एक साथ 16,108 पत्नियों को संतुष्ट रख पाते थे। आज के जीवन में हम देखते हैं कि एक पत्नी को भी संतुष्ट रखना कितना कठिन हो चुका है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, अनेकों कारण है, पर एक पत्नी को ही लोग पूरी तरह संतुष्ट नहीं रख पाते हैं। तो 16,108 क्या बात करना है, तो वो केवल भगवान कर सकते हैं। हमको कभी भी भगवान के जो वचन है, भगवत गीता में भगवान ने हमको जो संदेश दिया है या भागवत में उन्होंने जो संदेश दिया है उसका अनुकरण करना चाहिए, ना कि जो भगवान ने किया है उसका कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भगवान नहीं है, हम भगवान के दास है, भगवान के सेवक है। तो हमको चाहिए कि भगवान ने जो हमें बताया है उसका हमको अनुकरण करना चाहिए। तो नरक चतुर्दशी के दिन भगवान ने नरकासुर का अंत किया और ये 16,100 रानियों का उद्धार किया। और फिर तीसरा दिन आता है दीपावली अमावस्या, जो कि आज का दिन है। ये सबसे महत्वपूर्ण दिन है, इसमें बहुत सारी लीलाएं हो चुकी है। उससे सबसे पहली और सबसे कॉमन क्या है, लक्ष्मी पूजन। घर घर में, दुकान दुकान में, शॉप शॉप में, हर जगह पर लोग आज के दिन में लक्ष्मी देवी का पूजा करते हैं। परंतु जो ब्रह्मा जी एक गीत गाए हैं उसको बोलते हैं ब्रह्म संहिता, उसमें एक श्लोक है, लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि लक्ष्मी सहस्त्र, हजारों लक्ष्मियां वैकुंठ में क्या कर रही है, झाड़ू मार रही है। भगवान का जो वैकुंठ धाम है वहां पे तो धूल है ही नहीं, वहां पे तो कचरा है ही नहीं, फिर भी हजारों लक्ष्मियां वहां पर भगवान की सेवा कर रही है। क्यों? क्योंकि ऐसे जो गोविंद है वो गोविंदम आदि पुरुषम, वो सबसे पहले पुरुष है, तमहम भजामि, उनका हम भक्ति करते हैं। क्योंकि देखिए लक्ष्मी का एक नाम है चंचला, लक्ष्मी कभी भी एक जगह पर स्थिर नहीं रहती है, आज इनके पास है, कल उनके पास जाएंगी, कल किसी और के पास जाएंगी, कल बैंक में जाएंगी, कल गवर्नमेंट के पास जाएंगी, तो हमेशा लक्ष्मी घूमती रहती है, चंचल है लक्ष्मी। परंतु एक जगह है जहां से लक्ष्मी कभी भी अपना जगह छोड़ती नहीं है, वहां पे स्थिर है, वहां पे वो संतुष्ट है, वो है भगवान श्री विष्णु के चरण कमल। आप देखे होंगे अनंत पद्मनाभ जो कि क्षीर सागर में सोए हुए है अनंत शेष के ऊपर, उनके चरणों की सेवा करते समय हमेशा आपको लक्ष्मी देवी दिखाई देगी। तो हमको चाहिए कि अगर हमको लक्ष्मी देवी की आराधना करनी है, उनकी पूजा करनी है, तो हमेशा नारायण के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए। देखिए कोई भी जो सती स्त्री है, जो पतिव्रता स्त्री है, उसको उसका अकेले का आदर आतिथ्य पूजा अच्छा लगेगा क्या? नहीं। उसको उसके पति के साथ अगर उसका आदर आतिथ्य पूजा किया तो उसको वो बहुत प्रसन्न हो जाएगी। तो इसलिए हमको चाहिए कि लक्ष्मी पूजन हमेशा भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण के साथ करना चाहिए। तो लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। तो आज के इस महान दिन में लक्ष्मी देवी का भी समुद्र मंथन से प्राकट्य हुआ था। दूसरा आज के दिन का महत्व है भगवान श्री राम का अयोध्या में आगमन। तो हम सबको रामायण थोड़ा बहुत सबको पता ही है। तो 14 साल का वनवास पूरा करने के पश्चात विजयादशमी के दिन पर भगवान श्री राम ने रावण का अंत कर दिया, रावण को मार गिराया। उसके पश्चात विभीषण का राज्याभिषेक हुआ और भगवान कहाँ थे? लंका में थे और अयोध्या में उनको वापस आना था। आने के पूर्व उन्होंने हनुमान जी को कहा कि आप वायु की गति से जाओ, अयोध्या में जाओ और देखो भरत का क्या मनसा है, भरत की क्या इच्छा है, कि क्या वो राज्य संभालने में संतुष्ट है, कि जो चल रहा है वैसा चलने दो, राम नहीं आए तो भी चलेगा, ऐसा उसका एटीट्यूड है कि वो मेरा प्रतीक्षा कर रहा है कि राम आएंगे, हाँ ऐसा अगर विचार कर रहा है, क्या उसका मेंटल कंडीशन है, वो जाके देख के आओ। अगर भरत की 1% भी इच्छा है कि भरत ही राज्य करे, मैं ही राज्य करूं, तो मैं कभी अयोध्या नहीं लौटूंगा, ऐसा राम जी का विचार था। और जैसे हनुमान जी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भरत महाराज एक चिता रचा रहे थे लकड़ी से। तो उन्होंने जाके पूछा, अरे भरत जी आप क्या कर रहे हैं? वो बोले मैं चिता रचा रहा हूं। बोले क्यों? बोले अभी 14 साल पूरे होने आए हैं और 14 साल पूरे होने के पश्चात मैं एक क्षण भी भगवान श्री राम का वेट नहीं करूंगा, मैं उनकी राह नहीं दूंगा, तुरंत इस चिता पर खुद अग्नि स्नान कर लूंगा, खुद का आत्मदहन कर लूंगा। क्यों? क्योंकि 14 साल का भगवान ने वचन दिया था, 14 साल के बाद तुरंत भगवान यहां पर आने चाहिए। तो वो बोलने के बाद हनुमान जी उनको बोलते, अरे अरे बाबा ऐसा मत करो, रुको थोड़ा, मैं जाता हूं भगवान को आपका ये संदेश देता हूं और भगवान निश्चित रूप से जैसे ही 14 साल पूरे हो जाएंगे तो यहां पर आ जाएंगे। तो ऐसा कहने के बाद हनुमान जी वापस जाते हैं, राम जी को कथा बताते हैं कि भरत का क्या स्थिति है। तो ये देखने के बाद राम भी आतुर हो जाते कि कैसे जल्दी से जल्दी अयोध्या पहुंचा जाए। तो फिर अभी लंका से अयोध्या, साउथ से नॉर्थ आना बहुत कठिन है, इतना समय लगेगा। तो उस समय विभीषण जी कहते हैं कि मेरे पास इस रावण का पुष्पक विमान है। हाँ, पुष्पक विमान की ऐसी खासियत है कि वो मन की गति से कहीं भी पहुंच सकता है। और दूसरा इसका एक विशेषता ऐसा है कि उसमें कितने भी लोग अकोमोडेट हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि 12 सीटर 18 सीटर, हाँ आजकल के विमान कुछ बड़े बड़े विमान में 120 180 सीट रहते होंगे, परंतु ये जो पुष्पक विमान था उसमें पूरा शहर बैठ सकता है, इतना वो कैपेसिटी था उसका। तो भगवान श्री राम ने स्वयं अपने साथ विभीषण और सब वानर सेना, हनुमान जी सबको लेकर वे पुष्पक विमान लेकर अयोध्या की ओर चल पड़े। और जब ही अमावस्या की रात थी उस दिन भगवान श्री राम का अयोध्या में आगमन हुआ। उस दिन भगवान को अभी अयोध्या कैसे लोकेट होगा, अभी आप में से बहुत से लोग विमान में प्रवास किए होंगे, रात के समय से विशेष रूप से विमान जब भी कहीं पे भी उतरता है तो वो जो हवाई अड्डा रहता है वहां पे लाइट हाउस रहता है, कि लाइट देखकर उनको समझता है कि हाँ अभी यहाँ पे लैंड होना है। तो इसी प्रकार भगवान श्री राम का पुष्पक विमान उतरने के लिए अयोध्या वासियों ने सब शहर में दीपमालाएं लगाई थी। तो अवली का मतलब है लाइन में लगाए हुए और दीप का मतलब है दीप। जो दीपावली का अर्थ यही है कि दीप एक कतार में हर हर घर के ऊपर, हर छत के ऊपर, हर गली में, हर गांव में, हर रास्ते पर जो अयोध्या वासियों ने लगाए थे उसके ऊपर से इस सन का, इस उत्सव का नाम दीपावली हो गया। तो भगवान श्री राम के स्वागत हेतु अयोध्या वासियों ने अपने घरों के ऊपर, रस्तों के ऊपर दीपों की मालाएं लगाई थी, इसलिए आज के इस दिन को दीपावली कहते हैं। तो भगवान श्री राम आज के इस दीपावली के दिन अयोध्या में वापस आए थे। सियावर रामचंद्र की। तो इसी दिन और एक लीला हुई थी, भागवत में उसका वर्णन आता है, दामोदर लीला। दीपावली के दिन ही दामोदर लीला हुई थी, पीछे आप देखेंगे तो वो लीला प्रकट किया है कि भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया दोरी से बांध रही है उनके कमर को। दाम माने रस्सी और उदर माने कमर। तो भगवान श्री कृष्ण के कमर को रस्सी से मैया यशोदा ने बांधा था, इसलिए वो लीला को दामोदर लीला कहते हैं। तो वो लीला संक्षिप्त में आज हम सुनते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ गए, उसके पहले ही मैया यशोदा भगवान से पहले उठकर दही मथ रही थी, उससे मक्खन निकाल रही थी, ताकि भगवान श्री कृष्ण को मक्खन बहुत ही पसंद है। वो पहले उनका भगवान श्री कृष्ण का एक नाम क्या है, माखन चोर। दूसरे के घर में जाकर माखन का चोरी करते थे, इसलिए मैया यशोदा को लगा कि अरे मेरा कान्हा दूसरे के घर में जाके माखन खा रहा है, उससे अच्छा मैं घर पे उसके लिए स्वादिष्ट माखन बनाती हूँ। तो इसलिए उनके स्पेशल गायें भी थी जिनके दूध का एकदम एक सुवास कमल के पुष्पों के समान उसका गंध आता था दूध का, और वो दूध से दही लगा के उससे माखन बनाने का मैया यशोदा प्रयास कर रही थी, मथ रही थी दही। उसी समय भगवान श्री कृष्ण उठ गए नींद से, अर्ली मॉर्निंग का समय था तो उठ गए, तो वे और उठने के बाद उनको भूख लगी थी, वो मैया से स्तनपान का इच्छा कर लिए, और मैया ने नैसर्गिक रूप से कान्हा को अपने गोद में लिया और उसको दूध पिलाने लगी। उसी समय जो चूल्हे पे दूसरा दूध गर्म होने के लिए रखा था वो ओवरफ्लो हो गया, हाँ, तो उसको बचाने के लिए यशोदा मैया कान्हा को बाजू में रखकर वो दूध को मतलब चूल्हे से उठा के रखने के लिए चली गई। तो ये देखने के बाद भगवान श्री कृष्ण को बहुत गुस्सा आया और बोले सादे दूध के लिए मैया ने मुझे छोड़ दिया, मेरे से ये दूध इंपॉर्टेंट है क्या? तो कृष्ण गुस्सा हो गए, और उन्होंने ऐसा कहा जाता है, कहीं कहीं पे कहा जाता है कि बड़े पत्थर से, कहीं कहा जाए छोटे पत्थर से, वो जो मटका था जिसमें मैया यशोदा दही मथ रही थी उसको फोड़ दिया, और वो जो दही ताक लोनी जो भी था वो बहने लगा। और ये करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण वहां से दूसरे रूम में चले गए, और वहां जाने के पश्चात वहां पे ऊपर लटकाया हुआ ये था हंडे में या मटके में, और जो लोनी उसको माखन अलग अलग मटकों में भरा हुआ था उसको निकालने के लिए उन्होंने जो उखल था, उखल जो वहां पे उखल भी रखा है देखिए, उसको उल्टा करके उसके ऊपर चढ़े, वो माखन निकाला मटके में से और खुद भी खाने लगे और बंदरों को भी खिलाने लगे। तो इस प्रकार ये लीला चालू था। उसी समय मैया यशोदा का वो दूध को बचाने का काम हो गया, और मैया वापस आई कि अपना एक तो कान्हा को दूध पिलाऊं और ये जो दही मथने का काम है वो पूरा करूं, परंतु देखती है तो क्या कान्हा ने मटका फोड़ दिया है। तो उस समय एक छोटी छड़ी लेकर वो कान्हा को सबक सिखाने के लिए कान्हा को ढूंढने लगी, और उसने देखा मैया ने कि इस दूध दही के ऊपर चलने की वजह से कान्हा के पैरों के निशान इस रूम से वो रूम में चले गए। तो उसको फॉलो करते हुए हुए मैया यशोदा वो रूम में चली गई, और देखती है तो क्या कान्हा क्या कर रहा है, माखन खुद भी खा रहा है और बंदरों को भी बांट रहा है। एक आचार्य कहते हैं कि रामलीला में वानरों से फ्री में सर्विस ली थी भगवान श्री राम ने, उनको जो रावण के साथ युद्ध किया था उस समय वानर सेना ने उनको बहुत मदद की थी, तो इसलिए उसका कर्ज चुकाने के लिए अभी कृष्ण लीला में भगवान उनको माखन खिला रहे थे। आज भी अगर आप वृंदावन में जाएंगे तो बहुत सारे बंदर वहां पर है, और हमेशा वो भी अलग अलग लीलाएं करते रहते हैं, अपना आपका चश्मा ले लेंगे, आपका बीड बैग ले लेंगे, आपका मोबाइल ले लेंगे, और आप कुछ केला या दूध या जूस फ्रूटी उनको कुछ देंगे तो वो वापस करते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण जी अभी भी उनको रिपे कर रहे हैं। तो ये सब देखने के बाद मैया यशोदा को बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने छड़ी लेकर कान्हा को पकड़ने के लिए उसके उनके पीछे भागने लगी, और फिर भागते भागते अभी कान्हा तो छोटा बच्चा है परंतु उसका एनर्जी लेवल है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत भागता है, और मैया यशोदा उस समय भी उनका एज उम्र थोड़ा ज्यादा था, उनको थोड़ा लेट पुत्र प्राप्ति हुई थी इसलिए, और उनका तबीयत भी अच्छा था मतलब, तो इसलिए वो ज्यादा भाग नहीं पा रही थी। तो मैया का परिश्रम देखकर कान्हा ही रुक गए और माँ की पकड़ में आ गए। फिर मैया ने बोला कि ये उखल ने तुम्हें मदद की थी तो इसी से तुम्हें अभी बांध देती हूँ, तुम बहुत नटखट हो गए हो। तो मैया यशोदा रस्सी लेकर भगवान श्री कृष्ण को बांधती है। ऐसा कहा जाता है कि मैया यशोदा कितनी भी दोरी लाए और रस्सी कितनी भी लाए और रस्सी दो उंगली कम पड़ रही थी, कान्हा को बांध नहीं पा रही थी। उन्होंने उनकी 9 लाख गाय थी, सभी गायों की भी रस्सी मंगा ली, फिर भी कान्हा को बांध नहीं पा रही थी। अंत में कान्हा ने खुद बंधवा लिया खुद को। तो इसमें भी आचार्य कहते हैं कि ये जो दो उंगलियां है ये क्या है कि हमारे परिश्रम और भगवान की कृपा। हमारे परिश्रम भगवान देखते हैं कि हम कितना भक्ति में प्रगति करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान को पकड़ने के लिए कितना प्रयास करते हैं, और उसके पश्चात भगवान खुद अपनी कृपा प्रदान करते हैं, और फिर उसी के बाद हम भगवान की हमको प्राप्ति हो सकती है। बड़े बड़े योगी हजारों लाखों सालों से भगवान के ऊपर ध्यान लगाए बैठे हैं, उनको भगवान के चरणों के रज की भी प्राप्ति नहीं हुई, नाखून का भी दर्शन नहीं हो पा रहा है, परंतु ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैया यशोदा ने रस्सी से बांध लिया। तो ऐसा ये जो लीला है ये भी आज के दिन हुआ है। इसी लीला को स्मरण करते हुए हर रोज शाम को 7 बजे हम इस्कॉन के हर मंदिर में भगवान श्री दामोदर को दिया अर्पण करते हैं, दीपदान करते हैं। तो आज भी शाम को 7 बजे यहां पर दीपदान होगा, और आज की तरह पूरा जो महीना है, ये जो कार्तिक मास बोलते हैं इसको, इस कार्तिक मास में हर शाम को 7 बजे लगभग भगवान श्री कृष्ण को दीपदान दिया दिखाया जाएगा। सभी सुविधा यहां पर की जाएगी। आप में से किसी को भी समय निकाल पा रहे हो तो रुकिए, शाम को यमुना आरती होगी, गिरिराज जी का आरती होगी, उसके बाद भजन होंगे, और साथ ही साथ श्री श्री राधा दामोदर मंदिर है वृंदावन में, वहां पर भी और यहां पर भी मंदिर में भी भगवान श्री कृष्ण को दिया दिखाया जाएगा। तो आप सबको हम आह्वान करते हैं कि दीपदान में अवश्य भाग लें। आपके घर पर किसी को कुछ कार्यक्रम रखना है दीपदान का, पिछले हफ्ते हमने हमारा जो वाड़ा में सोसाइटी है मावली रेसिडेंसी, वहां पे हमने दीपदान का कार्यक्रम आयोजित किया था। उसमें हमारे पूरे सोसाइटी के सभी जो रेसिडेंट्स है वो लगभग 200 लोग और गांव में रहने वाले और भी कुछ नागरिक वहां पर आए थे, और सबने भगवान श्री दामोदर को दीप दिखाया। तो ऐसा कार्यक्रम आप आपके घर पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके प्रभु जी कोई पहचान के रहेंगे तो वे आपके घर पे आएंगे, आपको मार्गदर्शन करेंगे कैसा अरेंजमेंट करना है, और दीपदान का कार्यक्रम आप आपके घर पे भी कर सकते हैं। इस कार्तिक मास में, ये जो दिवाली का महीना है, इसमें दीपदान का बहुत महत्व है। इसमें जो भी हम आध्यात्मिक कार्य करते हैं इस महीने में, उसका हमें 10,000 गुना लाभ होता है। तो हमको चाहिए कि इस महीने में हर रोज भगवान को दीप दिखाना चाहिए। तो यह जो दामोदर लीला है वो भी आज के दिन ही हुई थी। उसके बाद अगला दिन आता है गोवर्धन पूजा, उसी दिन बलि प्रतिपदा भी उसको बोलते हैं। बलि प्रतिपदा एक ऐसा है कि आप में से सभी ने वामन देव का नाम सुना होगा, छोटे रूप में भगवान वामन देव, उरुक्रम उनका और एक नाम है। तो वो भगवान वामन देव प्रकट हुए थे किसके लिए, बलि महाराज का उद्धार करने के लिए, और वे आए, आपको कथा भी पता होगी पर संक्षिप्त में बोलता हूं मैं। तो जो बलि महाराज थे वो यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ में ऐसा है कि यज्ञ की पूर्ति होने के पश्चात ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है, कि ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है। तो उसी यज्ञ में, बलि महाराज के यज्ञ में वामन देव, जो कि भगवान श्री विष्णु ही है, भगवान श्री कृष्ण ही है, वे एक छोटे बटुक ब्राह्मण का रूप लेकर, एक छाता लेकर वहां पर आते हैं, और आने के पश्चात बलि महाराज उनको कहते हैं कि हे ब्राह्मण वर, मैं बहुत प्रसन्न हूं, कृपया आप कुछ मांगिए, कुछ दक्षिणा, कुछ दान मुझसे मांगिए, मैं आपको देने की इच्छा रखता हूं। उस समय वामन देव उनसे कहते हैं कि मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो जो बलि महाराज थे उनको तो आश्चर्य हुआ कि मैं इतना बड़ा राजा हूं। हाँ, उस समय तो बलि महाराज स्वर्ग के भी राजा थे, तो मैं तो इतना बड़ा राजा हूं और मुझसे ये ब्राह्मण केवल 3 पग जमीन मांग रहा है, उससे तुम्हारा क्या होगा, और कुछ मांगो, ऐसा बोलते हैं। तो उस समय वामन देव बोलते हैं कि जो व्यक्ति जिसके पास जो है उससे संतुष्ट नहीं है, तो उसको पृथ्वी का पूरा धन मिला तो भी वो संतुष्ट नहीं होगा। तो इस लीला से भी हम ये सीख लेते हैं कि हमको जो भगवान की कृपा से जो मिला है उसमें हमको हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, ना कि दूसरे का देखकर उससे तुलना करनी चाहिए। आजकल हम हमेशा देखते हैं कि इसके पास ये है, उसके पास ये है, इनका सैलरी इतना है, उनका सैलरी इतना है, ये हम हमेशा बहुत से लोग कंपैरिजन करते रहते हैं। एक प्रभु जी है गौरांग प्रभु, वो कहते हैं कंपैरिजन इज कैंसर ऑफ माइंड, जो तुलना करने का जो स्वभाव है वो मन का कर्क रोग है, उससे वो बढ़ता ही रहता है, वो कभी संतुष्ट नहीं होता है। तो हमको चाहिए कि स्वयं से तुलना करनी चाहिए, स्वयं में कैसी सुधारणा लाई जाए या प्रगति की जाए, इसका हमने विचार करना चाहिए, ना कि दूसरे से तुलना करनी चाहिए। तो वामन जी को बलि महाराज 3 पग भूमि देने का वचन दे देते हैं, हालांकि उनके गुरु शुक्राचार्य उनको रोकते हैं कि अरे आप ऐसा मत करो, ये विष्णु है, 3 पग में तुम्हारा सब हर लेगा। हाँ, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है हरि, हरि का अर्थ है वो सब हर लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं कि सबका धन ही हर लेते हैं, भगवान आप सामने वाले व्यक्ति के अनुसार उसके भक्ति के लिए जो पूरक चीज है वो चीज हर लेती है। कि वही भक्त भक्ति में प्रगति करने के लिए अनर्थों से लड़ रहा है तो उसके अनर्थ हर लेते हैं। कोई व्यक्ति धन के वजह से या प्रतिष्ठा की वजह से मदमत्त हो रहा है और भगवान को भूल रहा है तो उसका धन हर लेते हैं। तो जिसके लिए जो आवश्यक है वही चीज का भगवान हरण कर लेते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम हरि भी है। तो उनके गुरु बोलते हैं, अरे रुको, इसको इनको दान मत दो नहीं तो तुम्हारा सब हर लेंगे। परंतु बलि महाराज एक भगवान के भक्त थे, वो प्रहलाद महाराज के पोते थे, जो नरसिंहदेव के लीला में हम सुनते हैं प्रहलाद महाराज थे, उनके वो पोते थे। तो स्वाभाविक रूप से वे भी भगवान श्री कृष्ण के भक्ति थे। तो वे कहते हैं कि अगर ये विष्णु भी है और मुझे मांगने आए हैं तो इनको देने में कोई नुकसान नहीं है, इसमें मेरा लाभ ही है। और जैसे उनके गुरु ने कहा तो दो पग में ही भगवान श्री वामन देव ने पूरा पृथ्वी लोक और ऊपर का लोक नाप लिया। और तीसरे पग में बलि महाराज ने को पूछा कि अभी मैं तीसरा पग कहां रखूं, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं, तुम्हारा सब तो अभी मेरा हो गया, तीसरा पग कहां रखूं। तो ये भक्त की विचारधारणा है कि बलि महाराज बोले कि हे भगवान, आपका जो तीसरा पग है आप मेरे सर के ऊपर रखो, मैं स्वयं को आपको देता हूं। तो देखिए हर एक व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आती है, अलग अलग परीक्षाएं आती है। जैसे शिव जी की कथा में हमने सुना कि कैसे उनको हलाहल पीना पड़ा, परंतु भगवान के भक्त है वे कभी भी भगवान से कंप्लेन नहीं करते कि मेरे से ऐसा क्यों। बलि महाराज उनको झगड़ा कर सकते थे, क्या मैंने आपको दान देने का वचन दिया और आपने मेरा ही सब हर लिया और अभी वापस मुझे ही पूछ रहे हो तीसरा पग कहां रखूं। हाँ, ऐसा किसी का कैपेसिटी है क्या कि अपने पास जो है वो सब देने का और उसके पश्चात खुद को भी दे देने का? ऐसा बहुत कम लोगों में इतना जो विरक्ति दिखाई देता है। हालांकि वे राजा थे, ऐसा कहा जाता है जिसके जिस व्यक्ति के पास जितना ज्यादा धन है, जितनी ज्यादा संपत्ति है, उसका उतना ज्यादा आसक्ति उस चीजों के प्रति रहता है। जो पहले से गरीब है उसको किस चीज के पास क्या आसक्ति रहेगी, परंतु वो एक आधा व्यक्ति करोड़पति है, उसके पास घर गाड़ी बंगला पुत्र पौत्र सब है, तो उसको वो सब छोड़ना बहुत कठिन जाता है। परंतु बलि महाराज हालांकि पूर्ण त्रिलोक के स्वामी थे, परंतु फिर भी उन्होंने एक क्षण में भगवान वामन देव को अपना सब दे दिया। तो ये भक्त का विचारधारणा है। और वामन देव ने भी ऐसा नहीं कि अभी इसका सब ले लिया तो इसको अपना नौकर बना दिया। भगवान को हम कुछ देते हैं तो हमारा कभी भी उसमें नुकसान नहीं होता है, भगवान उससे ज्यादा हमको रिटर्न देते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट में बोलते हैं ना कि रिटर्न्स कितना आया, तो जितना इन्वेस्ट करते हैं उसके मल्टीपल्स बहुत ज्यादा प्रमाण में भगवान हमको रिटर्न्स देते हैं। तो बलि महाराज के लिए भगवान ने सुतल लोक नाम का एक पूरा लोक उनको दे दिया। इतना ही नहीं कि स्वयं वामन देव भगवान श्री कृष्ण उनके घर में द्वारपाल के रूप में सेवा ले लिए। देखो भगवान का नित्य उनको दर्शन होने लगा। तो इस प्रकार भगवान ने बलि महाराज के ऊपर कृपा की। उसी दिन गोवर्धन पूजा भी हुआ था। समय का अभाव है तो थोड़ा फास्ट लेते हैं हम। तो गोवर्धन पूजा, ये जहां पे आप सभी लोग आज आए हैं, इस धाम का नाम क्या है? गोवर्धन इको विलेज। तो ये गोवर्धन जो पर्वत है वृंदावन में है, उसी का प्रतिकृति यहां पर गोवर्धन पर्वत बनाया है। उसी का एक शिला गोवर्धन शिला यहां पर है। और उनका जो महोत्सव है तो गोवर्धन पूजा यहां पर हर साल बड़े उत्साह से मनाया जाता है। पिछले रविवार को परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने गोवर्धन लीला के ऊपर विस्तार रूप से प्रवचन दिया और उसी दिन गोवर्धन पूजा हमने सेलिब्रेट किया। एक क्या हुआ था वो मैं संक्षिप्त में बोलता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा रोक कर सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन की पूजा करने के लिए प्रोत्साहित किया और वो करने के पश्चात गोवर्धन जी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने सबके भोग अन्नकूट लगाया था उस समय पे, वो ग्रहण किए, वापस उनको प्रसाद के रूप में दिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने सब ग्वाल बालों को और ब्रजवासियों को लेकर गोवर्धन जी की परिक्रमा की, और परंतु एक व्यक्ति इससे नाराज हो गया, वो था इंद्र। देखिए जैसे मैंने अभी कहा था कि किसी व्यक्ति का अगर तुलना करने के स्वभाव हो या किसी के मन में थोड़ा लोभ हो तो उस व्यक्ति को कितना भी कुछ मिले वो हमेशा असंतुष्ट रहता है। अभी इंद्र के पास स्वर्ग है तो क्या कमी है? एक गांव के लोगों ने उनकी पूजा नहीं की तो उसमें क्या नुकसान है? परंतु केवल एक गांव के लोगों ने उनकी पूजा रोक कर गोवर्धन की पूजा की, इसलिए वे दुखी हो गए, गुस्सा हो गए और उन्होंने संवर्तक नाम के जो बादल थे उनको प्रलय लाने के लिए वहां पे अतिवृष्टि करने के लिए वृंदावन भेज दिया। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, गोवर्धन पर्वत को अपने लेफ्ट हैंड दाहिने हाथ के उंगली फिफ्थ मतलब लिटिल फिंगर सबसे जो कमजोर जो उंगली है उसके ऊपर उठाया और 7 दिन 7 रात उसको उठाए रखे। कुछ लोग भगवान से तुलना करते हैं अपने कि आपके कृष्ण ऐसे आपके कृष्ण ऐसे हम भी ऐसा करेंगे, तो भगवान की कोई अगर तुलना करता रहे या कोई व्यक्ति खुद को भगवान बताता रहे, आज के डेट में कुछ कुछ बाबा स्वामी जी भी ऐसे लोग हैं कि खुद को भगवान का अवतार बोलते हैं, तो उनको हमको कहना चाहिए कि कृपया आप एक आधा पत्थर आपके उंगली पे उठा के दिखाइए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो गोवर्धन पर्वत को 7 दिन 7 रात अपने उंगली पे उठाए रखा था। तो कोई भी ऐसा जो व्यक्ति भगवान से खुद की तुलना कर रहा रहे तो उनको हम ये उदाहरण दे सकते हैं। तो इस प्रकार गोवर्धन की लीला हुई, 7 दिनों के बाद इंद्र जी को अपनी गलती ध्यान में आई, फिर सुरभि माता का मदद लेकर वे भगवान की माफी मांगे और भगवान, क्योंकि भगवान हमेशा गाय और ब्राह्मण इनसे हमेशा संतुष्ट होते हैं। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, भगवान के लिए एक श्लोक है कि भगवान को ब्राह्मणों का और गायों का हित बहुत प्रसन्न है। तो इसलिए इंद्र जो है वो गाय को अपने सामने लेकर भगवान श्री कृष्ण का माफी मांगे और भगवान ने भी सुरभि माता को देखकर इंद्र को माफ कर दिया। इसलिए इंद्र ने भगवान को एक नाम दिया गोविंद। गोविंद भगवान की, गिरिराज गोवर्धन की। तो यह लीला भी नेक्स्ट डे कल के दिन में हुआ था। और आखिरी दिन है भाई बीज भाई दूज। इस दिन यमुना जो रिवर है, यमुना और यम ये दोनों सूर्य के पुत्र हैं, पुत्र पोत्री, या सूर्य देव की पत्नी है, उनका नाम है संध्या। उनके एक पुत्र है यमराज और पुत्री है यमुना, यमुना देवी, कालिंदी भी उनका एक नाम है। तो ये इनको इस दिन का महत्व ऐसा है कि जो भी व्यक्ति भाई दूज के दिन यमुना नदी में अपनी बहन के साथ या बहन भाई के साथ दोनों एक साथ डुबकी लगाते हैं और बहन के घर में जाकर बहन के हाथ के बना हुआ खाना खाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और बहन को कुछ भेंट स्वरूप भी देते हैं, तो उस दिन उनके सभी पाप धुल जाते हैं और उनको कभी यम का दर्शन नहीं होता है, उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो यह लीला भाऊबीज के दिन हुआ था। तो यमुना नदी में आप वृंदावन में जाके देखेंगे तो भाई दूज के दिन बहुत सारे लोग अपने बहन के साथ यमुना नदी में डुबकी लगाते हैं और ये भाई दूज का उत्सव मनाते हैं। तो इस प्रकार दीपावली के 5 दिनों का हमने महत्व देखा। 5 दिन हम वापस से रिपीट करेंगे, धनतेरस, धन त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी, दीपावली। दीपावली के दिन 3 मुख्य लीलाएं हो चुकी थी, एक तो लक्ष्मी जी का उत्पन्न हुआ, लक्ष्मी पूजन करते हैं हम, दूसरा भगवान श्री राम का अयोध्या में आगमन और दामोदर लीला, चौथा दिन गोवर्धन पूजा, उसी दिन बलि प्रतिपदा भी कहते हैं, बलि महाराज को कृपा दी थी वामन देव ने और गोवर्धन लीला भी हुई थी, और आखिरी दिन भाई दूज, उसी को मराठी में भाऊबीज कहते हैं, उस दिन बहन अपने भाई के अच्छे के लिए भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करती है। तो आशा करता हूं कि आपको सभी को दीपावली का ये जो महत्व है वो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आज की तरह हर रविवार को सुबह 10:30 से 12:30 संडे फिस्ट रहता है, उसमें आप भाग ले सकते हैं। उसके पश्चात सबके लिए लंच प्रसाद भी होता है, तो आप आपके मित्र परिवार फैमिली फ्रेंड्स को भी लेकर आ सकते हैं। हरे कृष्णा।